आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
सप्ताह के मुख्य समाचारों में विक्टोरिया के कथित पुलिस हत्यारे की तलाश जारी, इजरायली टैंक गाजा शहर के करीब और क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय सत्र का लॉन्च। सप्ताह भर की कुछ प्रमुख खबरें विस्तार में और मैं हूं अनीता बरार। इस सप्ताह की शुरुआत में पोरेपोंका विक्टोरिया में दो पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या करने के संदिग्ध व्यक्ति 56 वर्षीय डेजी फ्रीमैन की तलाश शुरू हुई। ये पुलिस अधिकारी मेलबर्न से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित पोरेपोंका में स्थित एक वारंट की तामील के लिए एक संपत्ति पर गए थे, तभी उन पर हमला हुआ। फ्रीमैन वहां पास की झाड़ियों में भाग गया। एक 42 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय लड़के को गुरुवार देर रात तक गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद आगे की पूछताछ तक उन्हें रिहा कर दिया गया। 56 वर्षीय डेजी फ्रीमैन की तलाश अभी भी जारी है। फ्रीमैन मंगलवार को राज्य के उत्तर पूर्व में पोरेपोंका के पास झाड़ियों में भाग गया जब उसने कथित तौर पर डिटेक्टिव लीडिंग सीनियर कांस्टेबल नील थॉम्पसन और सीनियर कांस्टेबल वादिम डी वाट की हत्या कर दी। विक्टोरिया पुलिस ने चेतावनी दी है कि वे उन सभी पर मुकदमा चलाएंगे जो फ्रीमैन को छिपाने में मदद कर रहे हैं।
If anyone has the information, they should contact Crime Stoppers immediately. We would say if people know where he is or cite him to contact 000 immediately. We need the community support in this operation. It's our highest priority to arrest the offender.
विक्टोरिया पुलिस के मुख्यायुक्त माइक बुश ने कथित पुलिस हत्यारे डेजी फ्रीमैन से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। 28 अगस्त को खबर मिली कि इजरायली टैंक गाजा शहर के बाहरी इलाके इबाद अल रहमान में घुस आए हैं, घरों पर गोलाबारी कर रहे हैं और निवासियों को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। निवासियों ने बताया कि कई लोग घायल हो गए और कई लोगों को शहर के अंदर तक ढकेल दिया। ये हमला इसराइल ने हमास के आखिरी गढ़ पर एक नए हमले के तौर पर किया है। गाजा के लगभग 2 मिलियन निवासियों में से आधे वहां शरण लिए हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत डेनी डेनन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हमलों पर खेद व्यक्त किया, जिसमें पत्रकारों और चिकित्सकों सहित 20 लोग मारे गए थे।
Or non-combatant, you know, we fight Hamas. That's our goal, to eliminate Hamas. We are still looking into the details of that incident, and I'm sure that in the next few days we will have more information about that. But Prime Minister Netanyahu was very clear that he said it was a tragedy. We regret it.
मंगलवार को प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने संसद भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि एजीओ यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वसनीय सबूत इकट्ठा किए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरानी सरकार का हाथ रहा था। उन्होंने कहा कि खुलासा किया गया है कि ये हमले ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए थे। विशेष रूप से ये हमले मेलबर्न में एडास इसराइल सिनेगॉग और सिडनी में लुइस कॉन्टिनेंटल किचन पर हुए थे। ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया गया और तेहरान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास में कामकाज निलंबित कर दिया गया। ईरान ने इस आरोप का खंडन किया कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हुए 2 यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ था। ऑस्ट्रेलिया के ईरानी समुदाय और ईरान जैसे संगठनों के सदस्यों ने ईरान के राजनयिकों को निष्कासित करने और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, जैसा कि राणा दादपुर ने SBS को बताया।
We have been advocating for the IRGC to be listed as a terrorist organization in Australia for many years now. In every single protest, rally, campaign letter meetings that our community members have had with politicians and of different organizations in Australia that was forefront of all the requests of our community.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर चीन रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता है तो वो चीन पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। चीन दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स का अग्रणी उत्पादक है जिसका उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है जो ऑटोमोटिव, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप का कहना है कि चुंबक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. So for it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint.
वैसे उच्च टैरिफ लगाने की प्रक्रिया कम से कम नवंबर तक टल गई है। और उधर ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% के भारी भरकम टैरिफ के कारण भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ चुकाने वाले देशों में शामिल हो गया। शुरुआत में अमेरिकन राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में रूसी तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया। एक नई रिपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की एलर्जी कैपिटल कहा जाने की बात हो रही है। डेलॉयट एक्सेस इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 18 वर्षों में एलर्जी से ग्रस्त ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। 17,000 घरों पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि 82 लाख लोग एलर्जी से ग्रस्त हैं, जबकि 2007 में ये संख्या 41 लाख थी। प्रोफेसर क्रिस्टन पैरेट, नेशनल एलर्जी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निदेशक और मर्डोक चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि इस नाटकीय वृद्धि के कई कारण हैं।
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So we've got pollen changes, we've got pollution changes, we've got lots of irritants and chemicals in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
बीते दिनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। इससे विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक हिंसा का सामना करने वाले छात्रों के लिए शिकायत दर्ज कराने के रास्ते जल्द ही आसान हो जाएंगे। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक का उद्देश्य एक नेशनल हायर एजुकेशन कोड स्थापित करना है, जिसके बारे में सरकारी सांसद कैरल बेरी का कहना है कि ये विश्वविद्यालय के सभी पहलुओं पर लागू होगी।
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head-on.
अब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए सेनेट से पारित होना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसरों में हर साल 14,000 से अधिक यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। अगर इस समाचार से जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो आप 1-800-RESPECT यानी 1-800-737-732 पर या लाइफलाइन पर 131114 पर संपर्क कर सकते हैं। और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत के अवसर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की कि लगभग 20 वर्षों में पहली बार हर राज्य और क्षेत्र में मैच खेले जाएंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जॉश हेजलवुड ने अपने प्रदर्शन पर बात की है, क्योंकि हाल ही में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि उन्हें आगामी सत्र के लिए राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा जा सकता है।
I feel like I'm bowling as well as ever. I think the different formats keep it fresh, keep it refreshing all the time. To you know, it's always a different challenge. Batsmen coming pretty hard, well, in all formats these days, but the white ball in particular. And yeah, you're just adapting your game to the different formats.
सप्ताह भर के समाचार समाप्त हुए। आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।